अभी अभी बहन जी एक प्रश्न कर रही थी कि जीवन भर जो कुछ भी करते रहे अच्छा बुरा उसके संसार बनते रहे अंदर, मौत के वक्त कुछ ऐसा मन में संकल्प आ गया जो घोर रजोगुणी संकल्प था, चाहे वो मोह से प्रेरित हो चाहे वो लोभ से प्रेरित हो, तो क्या हमारा अगला जन्म उसी इच्छा के अनुकूल हो जाएगा जो आखिरी वक्त मन के अंदर संकल्प पैदा कर रही है? कल एक गीता का श्लोक उच्चारण किया गया था, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। सदा जिस भाव से भावित रहा है, जिस भाव के वशीभूत रहा है, उसके अनुसार ही त्यजति अन्ते कलेवरम, अंत में जब ये शरीर का त्याग करेगा तो उसके अनुसार ही उसको अगला जन्म प्राप्त होगा। आप देखते होंगे कि जिस समय आपको नींद आती है, जब तक जागृत हालत है, संसार के संकल्प संसार के विचार आपके मन के अंदर घूमते रहते हैं। आंख बंद है, सारा वातावरण शांत है, परंतु विचार की दौड़ नहीं रुकती, वो चलती रहती है। लेकिन जैसे ही आपको नींद आती है, नींद का मतलब ये होता है कि इंद्रियों का अनुभव बंद हो जाता है। ना आप उस समय बाहर की बात सुन रहे हो, ना कुछ देख रहे हो, आपके मच्छर भी काट रहा है उसका भी अनुभूति आपको नहीं हो रही है, तो इंद्रियों का अनुभव बंद है। इसको योग की भाषा में कहा जाता है कि इंद्रियां मन के अंदर लीन हो जाती हैं। लेकिन मन एक्टिव है, मन के अंदर संकल्प, मन के अंदर विचार, मन के अंदर इच्छाएं, मन के अंदर प्लानिंग, सब कुछ चल रही है। लेकिन मुझको बाहर का कोई होश नहीं, तो जो संकल्प आपके मन के अंदर दौड़ रहे हैं उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार आपके स्वप्न की रचना हो जाती है। और उस स्वप्न के संसार में आप नई देह से, वो देह भी आपके संकल्प ने ही तैयार की है, नए लोगों के बीच में या पुराने लोगों के बीच में और नए संसार में जो पुराने जैसा ही है, लेकिन जिस संसार में आप जागृत हालत में कर्म कर रहे थे वो संसार नहीं है, है वो नया है, स्वप्न का संसार है। तो सारी एक्टिविटीज आपकी वैसी ही होती हैं जैसी इस जागृत हालत में, इस संसार में आप करते हो। लेकिन जागृत हालत में और स्वप्न की हालत में एक ही अंतर होता है कि यहां आप सोच विचार के कुछ एक्शन करते हो, वहां आप मजबूरी में एक्शन करते हो। ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक सारा संसार चल रहा है, मेरी देह भी चल रही है, सारी क्रियाएं भी हो रही हैं और वैसी ही क्रियाएं हो रही हैं जैसी जागृत हालत में होती हैं, उनके द्वारा मुझे सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, बेचैनी भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है वैसे। तो ये जो आपके संस्कार बन चुके हैं अंदर, उन संस्कारों के अनुसार ही ये सारी रचना आपके सामने रची जा रही है, वो सारी क्रियाकलाप वहां पर हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जिस समय मनुष्य की डेथ होती है इस देह की, उस समय भी आपके अंदर जो भी संकल्प उठेंगे वो आपकी सोने से पहले इच्छा के अनुसार नहीं उठेंगे, वो ऑटोमेटिकली उठेंगे। तो आपके कर्मों का जो नेट इफेक्ट है, आपके संस्कारों का जो नेट इफेक्ट है, उसके अनुसार आपका जो संकल्प है जिसको आप आखिरी संकल्प कहते हो, वो तमोगुणी भी हो सकता है, रजोगुणी भी हो सकता है, सतोगुणी भी हो सकता है। तो इसीलिए गीता कह रही है कि सदा तद भाव भाविता, सदा जिस भाव से भावित रहा है, इसका तो आपका जो स्वभाव है वो रजोगुण प्रधान रहा है, तमोगुण प्रधान रहा है या सतोगुण प्रधान रहा है, जिसकी प्रधानता रही है उसी के अनुसार आपको अगली देह और उसी के अनुसार आपको संग, उसी के अनुसार आपको संसार की परिस्थितियां प्राप्त होंगी। इसलिए सतपुरुष बार बार ये बात कहते हैं कि मानव जन्म बड़ा ही कीमती है। कोई भाग्यशाली मनुष्य ही सतोगुण प्रधान स्वभाव लेकर पैदा होता है, क्योंकि पूरे जन्म ने उसकी कमाई की है उस गुण की। तो वर्तमान जन्म जो है, ये मनुष्य जन्म मिल तो गया मुझको, लेकिन इसमें मैंने इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है कि मेरे स्वभाव में सतोगुण स्ट्रांग हो जाए, सतोगुण प्रधान हो जाए और रजोगुण और तमोगुण ये दब जाए। बने तो रहेंगे क्योंकि प्रकृति तो तीन गुणों से युक्त है, तीनों गुणों का समावेश तो आपके मन के अंदर होगा, आपके स्वभाव में होगा, लेकिन प्रधानता उसमें सतोगुण की हो सकती है। और इसके लिए सब कुछ कहते हैं कि ईश्वर विश्वास, ईश्वर का निश्चय जरूरी है। और ईश्वर के निश्चय के साथ साथ ईश्वर विज्ञान जो है, जिसको अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं, उसका ज्ञान भी जरूरी है। क्योंकि हर इंसान जो भी संसार में आया है, कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपना बुरा चाहता हो। चाहे किसी आदमी ने 50 कत्ल क्यों ना करनी हो, देखिए आप मिलोगे तुम अपना बुरा चाहते हो तो यही कहेगा, क्या मूर्खता वाली बातें करते हो, कोई इंसान अपना बुरा चाहता है क्या? हर इंसान अपना भला ही चाहता है, अपना अच्छा ही चाहता है, लेकिन उसको यह पता नहीं होता कि किस सोच में, किस कर्म में, किस निर्णय में भलाई है, किस निर्णय में बुराई है। उसको ठीक ठीक ये बोध नहीं होता, वो वहम में रहता है। इसलिए धोखा देने वाला इंसान धोखा देके बड़ा खुश होता है, मेरा काम बन गया। नहीं तो दुख होना चाहिए उसको, धोखा देकर, धोखा देना गलत बात है, इससे जिंदगी खराब होगी। यदि उसका निश्चय ये पक्का हो तो धोखा देकर खुश क्यों होगा? अंदर से सोचेगा मैंने मजबूरी में धोखा दे तो दिया, अब इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी, मैं बच नहीं पाऊंगा, भविष्य में ये दुख रूप में मेरे सामने आएगी। तो धोखा देने के बाद भी उसके अंदर एक पश्चाताप पैदा हो, आगे से इस पश्चाताप के कारण वो धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा। बिना धोखा दिए अन्य प्रकार से पुरुषार्थ करके अपना काम सिद्ध करने की कोशिश करेगा, पैसा कमाने की कोशिश करेगा। तो मनुष्य की बुद्धि में ठीक ठीक निश्चय नहीं होता कि ये तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, इनके अनुसार कर्म कौन से है, इनके अनुसार खाना पीना कौन सा है, इनके अनुसार व्यवहार कौन सा है, इसको ठीक ठीक इस बात का बोध नहीं होता। जिस सोसाइटी में पलता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, वही हरकतें वही क्रियाकलाप भी सीख लेता है। इसलिए बचपन से देखा होगा बच्चों में बोध तो नहीं होता, तो माता पिता केयर रखते हैं उनकी, ध्यान रखते हैं उनका कि ऐसे बच्चे के संग में तो ये नहीं घूम रहा जिसकी आदतें बिगड़ी हुई हो। बड़े बड़े अच्छे बच्चे घर में गाली देना शुरू कर देते हैं, माँ बाप के कान खड़े हो जाते हैं, अरे ये गाली कहाँ से सीखी है, बच्चे को नहीं पता ये गाली अच्छी है या बुरी है। गुस्सा आई तो दूसरे बच्चे ने गुस्से में गाली दी थी, तो उसे गुस्सा आया तो उसने भी वही गाली दे दी। क्योंकि माँ बाप क्योंकि बुद्धिमान है, उनके अंदर बुद्धि है, वो जानते हैं भेद ये अच्छी है या बुरी है, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, वो खोजबीन करते हैं ये किसके साथ खेला था, किसके घर रह के आया है, किसके साथ ये घूमता फिरता है, किससे नई दोस्ती हो गई है इसकी, उसके कारण की वो खोज करते हैं। तो उसी प्रकार जिसकी संगत अच्छी है, जिसने सत्संग का श्रवण किया है या ऐसे लोगों का संग किया है जिनका सतोगुणी स्वभाव है, जो सतमार्ग में चलने में बुद्धिमान है, तो वहां से वो व्यक्ति अच्छी बातें सीख लेता है। आप जो भी यहां बैठे हैं, आप सब अपने बारे में भी जानते होंगे कि जब आप सत्संग में नहीं आया करते थे या आश्रम से आपका संपर्क नहीं हुआ था, तो आपके अंदर क्या क्या गलत आदतें थी। जब आपकी संगत ठीक हो गई, तपोभूमि आना शुरू कर दिया, आश्रम जाना शुरू कर दिया, कुछ सत्पुरुषों की बातें पढ़नी शुरू कर दी, तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आई, कौन कौन सी गलतियां आपने छोड़ दी, ये आपको सबको बोध होगा इस बात का। तो किस तरह से हमारे स्वभाव में सुधार होता है ये सभी जानते हैं। मनुष्य के अंदर इतनी अक्ल होती है, लेकिन अक्ल होते हुए भी वो अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है। इसीलिए किसी शराबी से पूछो आप, अच्छा ये बताओ दिल से कि शराब पीना अच्छी बात है, कभी कोई शराबी नहीं कहेगा कि शराब पीना अच्छी बात है, यही कहेगा कि मैं तो शिकार हो गया इसका, ऐसी संगत में पड़ गया मैंने सीख ली, अब मुझसे छूटती नहीं, लेकिन अच्छी बात तो नहीं है, उससे और साधारण सी बात पूछो, इसका स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता है या गलत प्रभाव पड़ता है, तो यही कहेगा कि स्वास्थ्य पे तो इसका गलत प्रभाव पड़ता है। अब बताइए कि जानते हुए भी ये चीज गलत है तो उसका गुलाम बना हुआ है। तो एक इच्छा जो गलत इच्छा है उसको बार बार रिपीटेडली आप उसको पूरी करते रहिए तो आपका स्वभाव बन जाएगा, फिर आपकी आदत बन जाएगी। और ये स्वभाव, ये आदत आपके अंदर कौन सा गुण पैदा कर रही है? तमोगुण पैदा कर रही है। वो गुण जिससे बुद्धि अंधकार अंधकार की ओर चली जाती है। बुद्धि में ठीक गलत का निर्णय करने की क्षमता कमजोर पड़ती चली जाती है। तो कमजोर बुद्धि जो है वो मन की गलत आदत का शिकार हो जाती है। तो ये बड़ी साधारण सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी की जरूरत नहीं है। तो बार बार हम जो छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं वो हमारी ऐसी आदतें बना देते हैं कि वो छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी गलतियों में तब्दील हो जाती हैं। तो जब जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, जवान होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, जो ओल्ड एज आती है, तो सारे वो संस्कार पक जाते हैं और नेट रिजल्ट उनका इन गुणों के प्रभाव के रूप में ही हमारे मन के अंदर संकलित हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। या उसका प्रभाव तमोगुणी होता है, या रजोगुणी होता है, या सतोगुणी होता है। तो मनुष्य जन्म लेकर इसलिए ये बात कही जाती है कि अच्छी संगत धारण करनी चाहिए, कोशिश करके अच्छे लोगों के संग बैठना चाहिए। इसलिए सतपुरुष कहते हैं घर में दैनिक सत्संग होना चाहिए। दैनिक सत्संग का मतलब क्या? कि सतपुरुषों की जो विचारधारा है, जो उनके जीवन से प्रकट होती है, जो उनके शास्त्रों से, जो उनके वचनों से प्रकट होती है, उन वचनों को सुनाना और सुनना, उनको समझने की कोशिश करना, उनकी जीवन में आवश्यकता क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझने की कोशिश करना। तो धीरे धीरे ये बातचीत जब घरों में ही होती है, बच्चे साथ में बैठे हों, तो माता पिता की प्लानिंग से हो सकता है ना। नहीं रोज वक्त है तो हफ्ते में एक दिन तो कम से कम साथ बैठे और सोचें, वो योजना बनाएं, वो तरीका सोचें कि कैसे ये संस्कार बच्चों में हम ला सकते हैं, प्लान करके। आगे क्या होगा आपको पता नहीं। जैसा पैसा कमाने के लिए आप सोचते हो भविष्य में ये बच्चे घर बसाएंगे, स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारी उठा सकेंगे, उसके लिए इनको कौन सी एजुकेशन चाहिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य कैसा चल रहा है, उसके साथ इनको कौन सी एजुकेशन चाहिए, सब सोचते हो? नहीं सोचते आप? कितनी कोशिश करते हो, कितनी प्लानिंग करते हो, लेकिन इसके बारे में वो बात आप नहीं करते। खुद चल भी रहे हो तो इसकी वैसी प्लानिंग आप नहीं करते, इसकी वैसी कोशिश नहीं करते। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आपकी वो जो कोशिश है उसके प्रति तो आपको ईमानदार होना चाहिए, उसके प्रति तो आपको होश में होना चाहिए। तो इस प्रकार की जिसकी प्लानिंग होगी परिवार के प्रति, जिसकी कोशिश होगी, विचार करके देखो, उसके अपने स्वभाव में वो गुण प्रधान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उसका सबसे बड़ा फायदा तो पहले उसको स्वयं होगा। तो रात दिन हमारी जब ये सोच बनी रहती है कि ईश्वर मार्ग बड़ा जरूरी है, सतोगुण को मैंने स्ट्रांग करना है, मेरे जीवन में ये प्रधान होना चाहिए, तो फिर आप सिमरन भी करोगे, आप सत्संग श्रवण भी करोगे, अच्छी संगत भी बनाओगे, जिनके बीच में आप उठने बैठने का, जिनके बीच में मौका मिलता है आपको, बातचीत करने का मौका मिलता है, आप सेवा करने की भी कोशिश करोगे, और सेवा करते समय होश में भी रहोगे कि प्रभु ये मैं अपनी कामना को कमजोर करने के लिए सेवा कर रहा हूं, और सेवा करके उस कर्म फल का त्याग करने की भी कोशिश करोगे। कर्म फल का त्याग का मतलब सेवा करके जो फल मिला है वो प्रभु तुमने दिया है, तुम ही उसके इसके मालिक हो। यदि उस फल पर मेरी निगाह रही तो फिर आपके अंदर निष्कामता कैसे आएगी? संसार में आपके कर्मों का फल सुख रूप में, दुख रूप में, सक्सेस फेलियर के रूप में मिलता है, आप जानते हो। इसी प्रकार सेवा का ये फल होता है। जब सेवा में आप उसके फल में निर्लेप होना सीखते हो तो आपके जो स्वार्थ कर्म है उसके फल में भी जो आपको सुख रूप में दुख रूप में मिलते हैं उसमें भी आपकी सोच बनी रहती है कि इस सुख का मेरे मन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इस दुख का मेरे मन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो स्वार्थ कर्म के फल को भी आप ईश्वर हुक्म में देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपके अंदर बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा जो है वो दुख नहीं पैदा होता, उनके अंदर धीरे धीरे आपके अंदर संभाव आने लगता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप उस ईश्वर की प्राप्ति की ईमानदारी से कोशिश करते, उसकी आवश्यकता समझते कि जब तक मैंने इस देह के अंदर जो मेरा मालिक मेरा ईश्वर मौजूद है, जो मेरे इस शारीरिक जीवन को सांसारिक जीवन को चला रहा है, क्योंकि मैं अपने देह को नहीं जीवित रखे हुए, मुझे पता है मैं अपने देह को जीवित नहीं रखे हुए, ना मैं दिल धड़का रहा हूं, ना मैं फेफड़े चला रहा हूं, अंदर की क्रियाएं मैं नहीं कर रहा हूं, वो सारा ईश्वर सत्ता कर रही है। तो वो जब संचालन कर रहा है इस देह का और संसार का, तो उससे ज्यादा भला करने वाली चीज और कोई दुनिया में उसको नजर नहीं आती। तो उस ईश्वर की प्राप्ति की बात गुरु करता है, सारे सत्पुरुष करते हैं कि उसको जानने से तेरे मन की ये दशा हो सकती है कि तेरे मन पर ना सुख का असर पड़ेगा ना दुख का असर पड़ेगा। कि जिस मन पर सुख का असर पड़ता है उस मन पर दुख का भी असर पड़ता है, और जिस मन पर सुख दुख का असर पड़ता है वो मन हमेशा बेचैन रहता है। बेचैन क्यों रहता है? क्योंकि इस प्रकृति में हर चीज द्वंद्व रूप में बनी हुई है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो मैं मन के अनुकूल परिस्थितियां चाहता हूं संसार के अंदर, लेकिन यह संभव ही नहीं प्रकृति में, यह संभव ही नहीं। इस सिद्धांत को मैं नहीं सीखता, ना संसार में यह सिद्धांत सिखाया जाता है। संसार में सफलता प्राप्ति की कोशिश की जाती है, पूरा पुरुषार्थ आदमी सफलता प्राप्ति के लिए करता है, चाहे कैसी भी सफलता हो, क्योंकि सफलता में खुशी मिलती है ना। तो इसीलिए बुद्धि में अज्ञानता है, जिंदगी की समझ नहीं है, प्रकृति की समझ नहीं है, और कोशिश सारी जिंदगी सफलता प्राप्ति की करता रहा, तो ऐसे इंसान ने मानव जीवन में बेचैनी रूप विफलता ही प्राप्त करनी है। ये उसकी नेट लाइफ का रिजल्ट है। जो पूरी जिंदगी सफलता प्राप्ति की कोशिश करता रहा, यदि इसको एनालिसिस करना आता है अपना, तो अंदर से एनालिसिस कर सकता है वो बूढ़ा होने पर, क्योंकि जीवन का एंड आ गया ना उसका, कि मैंने जिंदगी का कोई वर्ष चैन से व्यतीत नहीं किया। तो महाजी कहते हैं बेचैनी लेकर तू जीता रहा, ये जीवन की कौन सी सफलता हो? तू आइटम गिनता रहा, मैंने ये डिग्री हासिल करनी थी मैंने कर ली, मैं तो सफल इंसान हो गया। मैंने इतने पैसे कमाए थे, कमा लिए, मैं तो सफल इंसान हो गया। तो आइटम गिनता रहा लेकिन मन की हालत नहीं दे सका। तू स्टडी का पीरियड ही गिन ले अपना। मान लिया तूने 25 साल की आयु तक स्टडी की, तो हर साल तेरा कितनी बेचैनी से बीता था। एक क्लास पास करता था, खुशी होती होगी एग्जाम पास करने की, बस नई किताबें आई, बेचैनी शुरू, प्रेशर बनना शुरू हो गया। एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है एग्जाम की, पढ़ाई करता है, तो चैन का वक्त होता है या बेचैनी का वक्त होता है? सब जानते हैं कि पढ़ाई एक बोझ है, मन के ऊपर एक बोझ है। भविष्य में सुख मिलेगा इस आशा में वो पढ़ाई करता है, अपने आप में पढ़ाई बोझ है। तो इसी प्रकार जो जिंदगी का सबसे सुख भोगने का पीरियड था 25 साल तक, वो मैं बेचैनी भोगता रहा, एक प्रेशर में जीता रहा। और आगे का यदि एनालिसिस करोगे तो यही हाल हमेशा रहा है। उसके बाद लोग कमाई करते हैं तो प्रेशर नहीं बना रहता। बिजनेस वाले को पूछो कितना प्रेशर बना रहता है, कितना कंपटीशन है, हमेशा भय बना रहता है कहीं मेरा बिजनेस डाउन ना हो जाए, समाज की चाल कहीं बदल ना जाए, डिमांड कहीं दूसरी प्रकार की ना हो जाए। ऐसी नौकरी का भय नौकरी करने वाले को बना रहता है, पता नहीं कोई गलती ना हो जाए। शरीर का भय बना रहता है, पता नहीं कहीं रोगी ना हो जाए, कहीं मौत ना हो जाए, कितने भय है। परिवार बसता है तो बच्चों का भय बना रहता है, जो कहानी अपनी थी वो बच्चों की कहानी शुरू हो जाती है। अपना भविष्य मैंने अपने हिसाब से बना भी लिया तो बच्चों के भविष्य की चिंता हो जाती है, हर बच्चे के भविष्य की चिंता हो। तो इतने आइटम्स हैं बेचैनी के कि आप यदि उसका ठीक ठीक एनालिसिस करो बारीकी से, तो आपने जिंदगी का कोई वर्ष भी चैन से व्यतीत नहीं किया। और ये जीने की जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को रजोगुण या तमोगुण ही कहते हैं। ईमानदारी से मेहनत करके आप आगे बढ़ते रहे, ये रजोगुण है। और बेईमानी करके आप जो है यदि आगे बढ़ते रहे तो ये तमोगुण। तो इसीलिए तमोगुण रजोगुण ये तो मनुष्य जीवन की बर्बादी है। तमोगुणी रजोगुणी जीवन जीना ये मनुष्य जीवन की बर्बादी है, क्योंकि ये आपके स्वभाव का पतन कर रही है। तो आपका बुढ़ापा यदि बीच में आ गया, यदि मृत्यु हो गई, तो आप पतन करके इस संसार से विदा हो रहे हो। अब जो नई देह मिलेगी आपको, नया जो समाज मिलेगा, नई जो परिस्थितियां मिलेंगी, वो पहले से बुरी परिस्थितियां मिलेंगी आपको, जहां आपको ज्यादा दुख ज्यादा बेचैनी झेलनी पड़ेगी, चाहे वो पशु के रूप में आप पैदा हो, चाहे वो मनुष्य के रूप में पैदा हो। इसलिए वर्तमान जन्म मैंने होश में व्यतीत करना था। और होश वाला मनुष्य धरती पर कौन होता है? जिसको हम अवतार कहते हैं, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, जिसको हम ऋषि कहते हैं, वो होश वाला मनुष्य होता है। तो उसके जो शास्त्र हैं, उनकी जो किताबें हैं, वो मैंने पढ़नी थी, वो मेरी विद्या का अंग होना चाहिए था। और मैं ऐसा हूं कि आज भी जरूरत पढ़ने के लिए नहीं समझता उसको, अभी भी उनको पढ़ने की जरूरत नहीं समझता, काम चलाता हूं केवल ऊपर ऊपर से। कुछ अच्छे कर्म कर लिए, चुन लिए मैंने, वो करना शुरू कर देता हूं और मेरा काम चल रहा है। तो संसार में मैंने कितनी बारीकी से कोशिश की, कितना पुरुषार्थ किया। और अध्यात्म यदि समझ भी आई तो पुरुषार्थ गायब है आपका। मन के अंदर वो स्पिरिट नहीं, वो भावना ही नहीं, इसके लिए मुझे गहरा पुरुषार्थ करना चाहिए, ये संस्कार बनाने हैं मैंने। जितना पुरुषार्थ करूंगा मेरे दिमाग में, मेरे मन में वही विचार फिर घूमते रहेंगे, वो सतोगुणी विचार ही आके मन को पकड़े रहेंगे जितना पुरुषार्थ करोगे। तो ये पुरुषार्थ जब आपका स्ट्रांग होगा तो जो रजोगुणी तमोगुणी पुरुषार्थ है ना वो वीक पड़ता जाएगा, तो ये संस्कार गहरे बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए यदि ये काम मैंने दिल से किया, लगन के साथ किया, तीव्र इच्छा लेकर किया, तो ये सतोगुण आपके मन को पकड़ लेगा, अर्थात मन के अंदर ये सतोगुणी संस्कार गहरे हो जाएंगे। तो ऐसी हालत में यदि आपकी देह की मृत्यु हो भी गई, क्योंकि आपकी मृत्यु तो है नहीं, आपकी देह की मृत्यु हो भी गई, तो ये जो सतोगुणी संस्कार आपने बनाए हैं ये मौत के वक्त आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपके अंदर प्रभु दर्शन की ही प्रेरणा मन में उठेगी। जान निकलने से पहले जागृत हालत में भी यदि रहे आप, आपको ये पता लग गया कि मेरी 10-15 मिनट में मौत होने ही वाली है, उस समय मन के अंदर यदि पश्चाताप होगा तो यही पश्चाताप होगा, प्रभु अब कृपा करना, ये जन्म तो मैंने काफी वक्त बर्बाद कर दिया, ये कुछ वर्षों से ही मुझे होश आई और आपने पूरी लगन से मेहनत की, यदि पूरा पुरुषार्थ किया तो प्रभु तो जानता है कि अब तो इसके अंदर तड़प यही है, इसको जिंदगी की समझ आ गई और गहरा पश्चाताप है इसके अंदर, तो प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मनुष्य जन्म ही देंगे, क्योंकि ये काम फिर उसी जन्म में हो सकता है, लेकिन जो आपने कर लिया था तो आप यदि ईश्वर भक्त बन भी गए अगले जन्म में तो देखोगे कि आपके जीवन में सुख की कमी आपको सदैव बनी रहेगी, क्योंकि कर्म ही आपके ऐसे। तो सामाजिक परिस्थितियां आपको ठीक नहीं मिली तब भी आपके अंदर वो भक्ति का बीज होगा, उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी आप ईश्वर भक्ति करने वाले बनोगे। तो ये सब कुछ आपकी पिछली करनी, पिछली सोच, पिछले संस्कारों पर निर्भर करता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, हमने पास में बड़ी गलतियां की होंगी, लेकिन भविष्य के लिए तो कम से कम अपना 1 घंटा भी बर्बाद ना करें, हर घंटा हमारी सही सोच के साथ व्यतीत होना चाहिए। अपने निश्चय को तो देखें, मेरे अंदर कितना निश्चय दृढ़ है, इसके लिए पूरी ताकत तो लगाएं, हम उल्टा ही करते हैं, क्या करें जवानी में तो संसार खूब होगा, अब शरीर बूढ़ा हो गया, अब सामर्थ्य नहीं रही, हम ईश्वर मार्ग में क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहे पहले भी और आज भी बहाना तलाश कर रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से उधर लगने को तैयार नहीं है। तो इसलिए चाहे आपकी आयु का 1 वर्ष बचा है, चाहे 10 साल बचे हैं, चाहे 20 साल बचे हैं, लेकिन हर दिन की मेरी प्लानिंग होनी चाहिए, ठोस प्लानिंग होनी चाहिए कि स्वार्थ को कितना मैं छोटा कर सकता हूं, कितना कम से कम मैं अपने मन को उधर डाइवर्ट कर सकता हूं। तो मैक्सिमम जो है कोशिश आपकी इन विचारों पर चिंतन करने की होनी चाहिए, स्वाध्याय की कोशिश होनी चाहिए, उसके द्वारा चिंतन आसान हो जाता है, इन विचारों को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए माई कहते प्रेमी, ये सब कोशिश तभी तो तेरी कामयाब होगी जब तू साथ में सिमरन करेगा, क्योंकि प्रभु तो अंदर है ना, तो अंदर अंतर्यामी प्रभु की इस देह के अंदर बैठकर तू उनसे मिलने की, उनको याद करने की कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर बाहर के क्रियाकलाप का क्या असर होगा तेरे, क्योंकि जितने भी ये सत्कर्म हैं इनका फल एक ही है कि आपको ये अंदर सिमरन में लगने में सहायता करते हैं। और वही हमने छोड़ दिया, उसी में लापरवाह बना रहे, संसार के काम ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहे, तो फिर ये जिंदगी का आखिरी वक्त भी आपका चला जाएगा। तो इतनी समझ तो मेरे ना होनी चाहिए कि ईश्वर ही मानव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है, सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु ईश्वर ही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु होती है उसके लिए टाइम की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यही आकर तो महाजी लिखकर दे रहे हैं आपको, संता विलास में, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी घोर बर्बादी करनी है, सिमरन से लापरवाही करनी ये आपके जिंदगी की घोर बर्बादी। और सिमरन में सफलता मिले इसके लिए सारे कर्म जरूरी हैं, जो सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक हर आइटम उसमें शामिल है। तो इसीलिए जिंदगी में बड़े ढीले रहे हैं, अब जो भी आयु बची है उसमें सख्त हो जाए, अपने प्रति सख्त हो जाए, दूसरे पर तो आपका अधिकार नहीं है। जहां कोई सुन सकता है आपकी, सुनाओ, चलाने की कोशिश करो उसको, लेकिन अपने साथ पूरी शक्ति रखो। तो जब आप नियम पूर्वक चलोगे तो नियम ऐसी चीज है, आप खुद देखते हो, कोई 4 बजे उठना शुरू करता है, पहले अलार्म लगा के उठता था, साल भर बाद पता लगेगा 4 बजे खुद ही आंख खुल जाती है। कोई 12 बजे भोजन करता है तो देखता है कि शुरू शुरू में उसकी 2 बजे खाना खाने की आदत थी, अब साल भर से 12 बजे खाना खाता है, तो पहले 2 बजे भूख लगा करती है, 12 बजे ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है। सारा सिस्टम आपका उसी नियम के अनुसार तैयार हो जाता है। इसीलिए हमको किसी नियम पर आधारित जीवन बनाना चाहिए। खाने का नियम हो, कमाने का नियम हो, पढ़ने का नियम हो, सिमरन का नियम हो, तो नियमित जीवन जब आपका मर्यादा में बन जाता है, जिसका मुख्य आइटम ईश्वर भक्ति है, तो ये संस्कार बनने में फिर देर नहीं लगती, बन जाते हैं। और फिर ये नियम पालन आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, बल्कि नियम के विरुद्ध चलना आपके लिए बड़ा कठिन होता है। तो थोड़े दिन की बात होती है, नियम से अपने आपको चलाना चाहिए। इसलिए महाराज कहते हैं, प्रेमी स्वार्थ और परमार्थ का नियम बनाकर स्वार्थ में भी समय दो, परमार्थ में भी समय दो। तो यदि आपके बुद्धि में फाइनल निर्णय के रूप में ईश्वर का महत्व बना रहा, जो बना रहना चाहिए, नहीं तो सत्संग का महत्व क्या हुआ था? आपने आपके अंदर इतनी समझ में नहीं आई कि सबसे जरूरी तो ईश्वर है जीवन में। जिसके जीवन में ईश्वर नहीं है तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी, मतलब ये समझिए कि उसने अपने जीवन की घोर बर्बादी की है, और वो समाज में भी वो संस्कार छोड़ के जा रहा है जो लोगों को बर्बाद करेंगे। तो ऋषि देखो ना, कि कुछ पैसा नहीं कमाते, भीख मांग के काम चला लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भीख मांगने की शिक्षा दे रहे हैं आपको, वो शिक्षा ये दे रहे हैं कि हर तरफ से वक्त बचाकर वो केवल ईश्वर के लिए जिए, केवल ईश्वर के लिए। लेकिन हमसे तो कह रहे हैं वो स्वार्थ और परमार्थ का टाइम टेबल बनाओ, हमसे तो यही कह रहे हैं। तो उनका वो आखिरी जन्म है, हम उनकी नकल नहीं कर सकते, लेकिन हम जहां खड़े हैं वहां के लिए वो क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं वो तो हम देख सकते हैं। उसमें हम कंसेशन क्यों मांगते हैं? उसके लिए हमको गर्व पुरुषार्थ करना चाहिए। तो यदि आप अपने टाइम टेबल के प्रति, अपने नियम के प्रति गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार दृढ़ हो गए, तो ये सतोगुणी संस्कार आपके आखिरी दिनों के जो बनेंगे, कुछ वर्षों के जो भी आपकी आयु बची है, ये आपको मनुष्य जन्म दिलवाने के अधिकारी बनाएंगे। और यदि आपके अंदर तीव्र लगन बनी रही ईश्वर प्राप्ति की, तो अगले जन्म में बचपन से ही आपके अंदर ऐसे संस्कार होंगे कि आप ईश्वर से ही प्रेम करने वाले हो गए। ईश्वर भक्तों के प्रति ही पास ही आपका मन लगेगा, जहां ईश्वर की बातें होंगे वहीं आपको सुनने में अच्छा लगेगा। अगले जन्म में सदगति हो जाएगी, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इतना अलर्ट रहने की जरूर बात है कि मैं अपने मन की हालत देखूं कि अभी भी मुझे पैसे से प्रेम है, संसार के भोगों से प्रेम है, संसार की वस्तुएं मुझे अच्छी लगती हैं, मेरा रुझान किधर है, ये मुझको देखना चाहिए। यदि रुझान संसार की तरफ ही है तो मुझे सख्त मेहनत की जरूरत है सत्वगुणी संस्कार बनाने के वास्ते। तो सत्पुरुष यही कहा करते हैं, जो भी उनके पास जाता है, जैसे बूढ़ा व्यक्ति भी महाजी के पास जाता था तो यही कहते थे, प्रेमी अब तुम्हारी शरीर की हालत तो ऐसी नहीं है, तुम लेट के बैठ के कैसे भी अपना सिमरन का नियम पूरा कर लिया करो। छूट उसको भी नहीं देते थे, कहते थे सिमरन का नियम पूरा कर लिया करो, यदि उसके अंदर लगन है तो क्या करेगा, सिमरन तो उतना ही कर पाएगा जितना शरीर परमिट करेगा, लेकिन मन को तो कोई रोग नहीं होता, मन को तो थकान नहीं होती, मस्जिद तो थक जाती है, मन नहीं थकता कभी, तो मन के अंदर तो वही चलता रहेगा, ईश्वर के अंदर वही बातें चलती रहेंगी, और अपनी जो पास्ट करनी है उसके प्रति अफसोस चलता रहेगा उसके अंदर, तो रात दिन उसके मन में एक ही धुन रहेगी, प्रभु क्या करूं सारा वक्त निकल गया, पश्चाताप करेगा तब भी प्रभु की ही तो याद आएगी उसको, पछताएगा तब भी तो प्रभु की याद आएगी इसको। इसलिए जो भी वक्त बचा है आप प्रभु की सोच में लगे रहो, समझे, संसार की सोच को धीरे धीरे मन से निकालने की कोशिश करो, उसके ईश्वर हुक्म में देखने की कोशिश करो। प्रभु हर जीव हर मनुष्य जब प्रारब्ध के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है तो मुझे क्या चिंता फिक्र पड़ेगी, जैसा उसके भाग में सुख होगा दुख होगा, काम बनने होंगे बिगड़ने होंगे, हो मेरा जो कर्तव्य बनता है मात्र कर्तव्य भाव से मैंने कर दिया, बाकी मेरा संबंध कोई नहीं, तो दिल से उसका संबंध केवल ईश्वर से बना रहता है, संसार से कोई संबंध नहीं रहता, वो कर्तव्य भाव से मात्र करता है, संबंध उसका कोई नहीं होता। तो जिसका इस तरह का अंत में जीवन बन गया, संबंध ईश्वर से ही बना रहा, तो ईश्वर संभाल लेते हैं, क्योंकि ईमानदारी से कोशिश होनी चाहिए, इसमें कोई बहाना नहीं चलता, मजबूरियां नहीं गिनाई जाती हैं, क्योंकि मन की कोई मजबूरी नहीं होती, मन आपका है, आप जैसा चाहो इसको बनाओ, जहां चाहो लगाओ, तो कोशिश लगने जरूर लाती है, ये ध्यान रखें, इसलिए घबराएं नहीं कि जिंदगी निकल गई, लेकिन जितनी भी बची है उसकी पूरी दिलोजान से कोशिश करकर ईश्वर का होकर जीना चाहिए, तो अगला जन्म आपका जरूर सुधर जाएगा, वर्तमान तो आपका सुधरेगा ही, जब इस कोशिश से जिए हुए जो भी दिन बचे हैं ये तो सुधरेगा ही, अगला भी सुधर जाएगा, क्योंकि प्रभु संभाल लेते हैं, वो जानते हैं मन की बात को कि अब इसको होश आ गई है, अभी गड़बड़ नहीं करेगा, मेरी तरफ ही आएगा। ओम ब्रह्म सत्य।